भक्ति की बात और आप लोगों को समझा देता हूँ, सावधान रहेंगे। एकलव्य का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बड़ा ही गुरु भक्त था, अद्भुत गुरु भक्त, अद्भुत गुरु भक्त। कैसा गुरु भक्त? जैसा नहीं होना चाहिए ऐसा गुरु भक्त हो गया, जो चाहिए नहीं। कैसा? आज एकलव्य वाहिनी कोई बनी है ना हमारे भारतवर्ष में, कोई एकलव्य वाहिनी, एकलव्य का भक्त कोई बनता है? किंतु बात ऐसी है, एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया, गुरु जी मुझको अस्त्र की शिक्षा चाहिए। उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया, नहीं तुम्हारे जैसे अज्ञ लोग को मैं सेवक शिष्य नहीं बनाऊंगा, ये बाण विद्या धनुर्विद्या नहीं दूंगा। उन्हें मैं तो आपसे लेकर के ही रहूंगा। कैसे लेकर के रहेगा? तो देखिए हम ले लेते हैं। चला तो गया वहां से और गभीर वन में जाकर के द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना दी और वहीं पर आत्मसमर्पण करके, गुरु जी ये धनुष विद्या हमको मिलनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने लगा है? उनके चरणों में फिर उठा करके धनुष बाण और शिक्षा करने लगा। बहुत ही उत्तम कोटि का धनुर्धर बना। इधर में द्रोणाचार्य समझ गए कुछ बात। एक दिन अपने सारे शिष्यों को, अर्जुन इत्यादि को लेकर उसी जंगल में पहुंचे। उनके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ते ने कुछ आहट पाकर भौंकना आरंभ किया और भौंकते ही उसका सारा मुख बाणों से भर गया, जब बोल नहीं सका, खरोंच नहीं आई, केवल बाण। जब ही भौंकने लगा एक साथ में इतने बाण आए कि मुख उसका भर गया, बोल नहीं सका। द्रोणाचार्य ने कहा, जी किधर से बाण आया? वो तो गुरु थे इस विषय के, उसी मार्ग की तरफ में चले जहां वो एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था। अर्जुन इत्यादि को साथ लिया, आगे बढ़े, देखा जे काला कलूठा, लंबा चौड़ा निषाद जाति का, और बांध लिए, धनुष बांध लिए हुए, प्रतीक वो कर रहा है अभ्यास। उन्होंने कहा, जे तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं एकलव्य आपका शिष्य हूं। ओ, तो तुम तो धनुष बाण धनुर्विद्या में बड़े पारंगत हो गए हो, तुम्हारा गुरु कौन? हमारे गुरु यही द्रोणाचार्य जी आप ही हैं, आपसे ही मैंने ये सब शस्त्र शिक्षा पाई। अब तो तुम पारंगत हो गए, अब तुमको दक्षिणा देना चाहिए गुरु को। आप दक्षिणा जो कुछ कहें मैं दे दूंगा। तो ठीक है, आप दक्षिणा देना चाहते हो, अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके मुझे दे दो। साथ ही साथ में तलवार ली और दाहिना अंगूठा काट करके उनको दे दिया। उन्होंने ले लिया, कुछ बोले नहीं, ये तुम्हारा कल्याण हो या कुछ हो, कुछ बोले नहीं, बस इतना ही कह दिया और पांडवों के साथ में लौट गए। ये मांगा क्यों? उसकी इच्छा तो पूरी होगी, धनुष बाण में पारंगत हो गया। वो चाहता था किस लिए धनुर्विद्या? मैं भगवान के भक्तों को, विशेष करके अर्जुन को पराजित कर उसे मार डालूं, इसलिए वो सीखना चाहता था। जो अर्जुन से भी बढ़कर के धनुर्धर हो जाएगा और अर्जुन को जीत कर और उसका मैं वध करूंगा। इसलिए वो दुर्योधन का मित्र था, काल जमन का मित्र था, जरासंध का शिष्य था, इसलिए ऐसा चाहता था। वो समझ गए थे द्रोणाचार्य पहले, ये किसी जगत कल्याण के लिए जैसे अर्जुन ने सिखाया ऐसे नहीं करेगा, जगत का हितकर करेगा, भक्तों को सताएगा, इसलिए उसका दाहिना अंगूठा मांगा किंतु दे दिया। पीछे क्या हुआ? अंगूठा नहीं रहने पर भी वो अपना अभ्यास जारी रखा और दुर्योधन की तरफ से अर्जुन के साथ में युद्ध किया उनको मारने के लिए, यहां तक कि कृष्ण को भी मारना चाहा, भगवान को भी। तो भगवान को कोई कैसे मार सकता है, भक्तों को भी नहीं मार सकता, चक्षु सुदर्शन उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए चक्र ने आकर के उसका गला काट करके फेंक दिया। ऐसे लोगों की ऐसी गति होती है। इसलिए कोई दुर्वासना रख करके गुरु के पास में मत जाओ। यदि कहते हैं तो आप प्रतीक्षा करो, और तब ये एकलव्य गुरु भक्त नहीं था, भगवत भक्त नहीं था, ये तो बहुत दूर की बात है। अब हम चलते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जी का नाम जानते हैं, उसके पिता ने वर पाया ब्रह्मा जी से, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, पाताल में नहीं मरूं, पृथ्वी पर नहीं मरूं, किसी महीने में नहीं मरूं, किसी पशु पक्षी मनुष्य या किसी के हाथ से नहीं मरूं जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस तरह से अमर बर ही वो प्राप्त हो गया, ऐसा समझा। समझा जी, ब्रह्मा जी को मैंने छका दिया। अब वो चाहता था क्या, हृदय में भावना की थी, विश्व का एक छत्र में राज्य करूं, यहां तक कि तल तलातल पाताल रसातल भूर भुआ सह महजन तप सभी हमारे कंट्रोल में रहे। मैं चाहूं तो हवा चले, मैं चाहूं तो अग्नि जले, मैं चाहूं तो ये काम हो, देवता लोग हमारे घर में पानी भरें, मैं जो आदेश दूं वही कर, हमारा वृद्ध कोई न खड़ा हो सके। किंतु हुआ क्या, उसी के घर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, और बचपन से ही वो भगवान का भजन करता था, सब समय ध्यान में तल्लीन रहता और कृष्ण का भजन करता। एक दिन उन्होंने परीक्षा के लिए उसके पिताजी ने बुलाया, तुमने स्कूल में जाकर के क्या सीखा सबसे ये तो बतलाओ। तो उन्होंने कहा, हे असुर वर्ज, असुरों में सबसे श्रेष्ठ, मैं तो यही जानता हूं कि ये संसार एक कुआं है, विष भरा कुआं है, ऐसा ये कुआं है, इसे निकल करके साधुओं के संगत में रह करके भगवत भजन करना ही सर्वोत्तम विद्या है, इसके अतिरिक्त कोई विद्या नहीं है। गृह रूपी अंधकूप को छोड़कर इससे निकलकर साधुओं के संग में रहकर उनके अनुगत्य में शिक्षा दीक्षा लेकर के भजन करे, यही समस्त विद्याओं का सार है, यही मैंने सीखा है अपने गुरु से। उसने सोचा जी, हमारे उसके गुरु तो संडामर्क है, वो नहीं जानता था इनके गुरु नारद जी हैं। नारद जी ने उनको 60,000 वर्ष तक शिक्षा दी थी जब वो मैया के गर्भ में था, इसलिए बचपन से ही ये भगवत विश्वासी और परम धार्मिक हुआ। वो जानता था जी भगवान सर्वत्र हैं, उनकी गति कहीं रोध नहीं हो सकती है, उनको न कोई मार सकता है, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, सर्वंतर्यामी हैं। नृसिंह देव जी उनकी रक्षा करने के लिए जबकि आविर्भूत हुए तो उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए न जमीन पर न आकाश में न स्वर्ग न कहीं, घर के बाहर नहीं भीतर नहीं, देहली पर और अपने जंघ पर बैठा लिया, न दिन न रात, शाम का समय, और न पशु न पक्षी न नर न कुछ। क्या हुआ, नी नी माने मनुष्य और सिंह दोनों का मिला हुआ, ऊपर में भयानक सिंह मुख और नीचे में मनुष्य अत्यंत सुंदर, हजारों अस्त्रों से विभूषित, जटाएं एकदम आकाश में फैल रहा था, उससे चिंगारियां निकल रही, अग्नि की ज्वाला निकल रही। फिर नकस्तु को उन्होंने पकड़ लिया, और सांप जैसे सांप को खिलाता है गरुड़, ऐसा खिलाने लगे। देवता लोग डर गए, इस बार यदि निकल गए इनके हाथों से तो सबको मार डालेगा। भगवान ने फिर उसको एक क्षण में अपने नखों से ही, अस्त्र शस्त्र नहीं, मलमास का समय, दिन नहीं रात नहीं, मलमास का समय माने क्या, किसी महीने के अंदर नहीं, किसी वर्ष के अंदर नहीं, लीप ईयर में, और उनके हाथों से नाड़ी भोड़ी निकाल करके और गले में पहन ली, और सारा संसार मानो जलने लगा, उसमें लक्ष्मी जी भी आई, बुलाया गया शांत करो, नहीं आई डर के मारे। ब्रह्मा और शंकर की तो बात ही क्या, प्रहलाद को कहा जे अपने पिताजी को शांत करो, वो दौड़ते हुए गए उछल करके और उसी अवस्था में नृसिंह जी की गोदी में बैठ गए। उनके नृसिंह जी के आंखों से आंसू आ गए, बहुत तेरे लिए देरी मैंने की, तुमको बहुत कष्ट सहना पड़ा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, कोई वर मांग ले, हमारा दर्शन अमोघ दर्शन है, जरूर इसका फल मिलेगा। तो उन्होंने धड़ल्ले से उत्तर दिया, डरे नहीं, उत्तर क्या दिया, मैं बनिया नहीं हूं जो मैं बनियागिरी करूं, आपका भजन बनियागिरी के लिए नहीं किया। बनियागिरी मैंने क्या, पैसा दो माल लो, बल्कि कैसा माल लो, घटिया माल दे देंगे, माल दिखलाएंगे अच्छा और देंगे क्या, घटिया माल दे देंगे, और यदि घटिया माल भी दिया और ऊपर से डंडी मार देंगे ऐसा, ये बनिया का काम है, हमारे यहां भी बनिया कुछ हैं, बनियागिरी करते हैं, गुरु जी से भी भगवान से भी बनियागिरी कर मांगना, ये भगवान से गुरु गुरु कही हम खबरदार मत मांगो, मैं बनिया नहीं हूं, न बनिया का बेटा हूं, आप हमको कोई वर की आवश्यकता नहीं, नहीं वर तो मांगना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम्हारे ऋणी से कैसे ऋण होऊंगा। अच्छा से अब वर ही देना चाहते हैं तो हमारे पिताजी ने आपके चरणों में बहुत अपराध किया है और हमारे प्रति भी कुछ अपराध किया है जिसे आप असंतुष्ट उनसे उनको मारा, तो आप कृपा करके उनको मुक्ति दे दें, उनका अपराध क्षमा कर दें। बेटा ये तो पहले ही काम हो चुका है, मैंने जिसके घर में उत्तम कोटि का महाभागवत है जो भगवान की संपूर्ण रूप से सेवा करता है, उसके 21 पीढ़ी के जितने माता पिता इत्यादि हैं सबका उद्धार ऐसे ही हो जाता है, कोई भजन करने की जरूरत नहीं, भजन करने की मैं प्रवृत्ति दे देता हूँ, साधु संग करा देता हूँ, और जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, 14 पीढ़ियों का उद्धार ऐसे कर देता हूँ, और साधारण जो कनिष्ठ भक्त भी हैं दृढ़ निष्ठा के साथ में मेरा दीक्षा इत्यादि लेकर के भजन करते हैं उनकी 7 पीढ़ियों का ऐसे ही उद्धार कर देता हूँ। अरे तुम तो उत्तम भागवत है, 21 पीढ़ी का तुम्हारा उद्धार मैंने, कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा जे प्रभु तो जब प्रसन्न नहीं है, देना ही चाहते हैं तो एक बात कीजिए, हमारे ऊपर से आप प्रसन्न हैं, आप एक बात दीजिए कि संसार के सभी लोग बड़े दुखी हैं कि पतंग घास पौधा जहां प्राणी मात्र है, देवता तक ब्रह्मा तक सब बड़े लोग दुखी हैं, मैं उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं और अपना जो फल भोग रहे हैं, मैं उनका फल लेकर के मैं चिरकाल तक मैं भोगता रहूं, और हमारा यदि कुछ भक्ति हुआ है ये भक्ति का फल लोगों को बांट करके उनको मुक्त दे करके अपना सेवक बना लीजिए। भगवान बोले ये तुम जीत गया मैं हार गया। तब इतना एक बात कहता हूं, जो हमारी तुम्हारी जो गाथा है जो वर्णन करेगा सुनेगा उसको हमारी प्रिय भक्ति हो जाए, ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारी भक्त अविचल बनी रहे। देखो कितने उच्च कोटि का भक्त, भक्तों में प्रहलाद महाराज जी का नाम अग्रगण्य है, किंतु शुद्ध भक्त लोग ऐसा नहीं चाहते। क्यों, भगवान के सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। इन्होंने भगवान की सेवा प्रहलाद महाराज जी ने क्या की, इस पर विचार करो। प्रहलाद महाराज जी ने उनके पैर दबाए, न आरती उतारी, न कुछ भोजन बना करके उनको आरोप करके भोग दिया, न क्या किया, कुछ तो किया नहीं, स्तव करते रहे, वार्तालाप भी वो सब कुछ हुआ। वो जानते हैं भगवान को भूख नहीं है, भगवान हिरण्यकश्यप के साथ इतने लड़ करके भी थके नहीं, उनको क्लांति नहीं होती है, उनको प्यास नहीं लगती है। हम लोगों को कोई ना कोई चीज की जरूरत होती है, भूख प्यास लगती है ना, कभी कभी हमारे इच्छा होती भी ये भी कि हमको पति मिले सुंदर, हमको सुंदर साध्वी स्त्री भी मिले, हमको सुंदर बेटे मिले, ये सब तरह तरह की कामना है। भगवान को तो कोई कामना है ही नहीं, किसी से वो डरते नहीं। जो प्रहलाद को बुलाएंगे जो मेरी रक्षा करो, और भगवान को भूख प्यास कुछ नहीं है, इसलिए वो क्या सेवा करें। वो तो बेटे की तरह प्रहलाद ही हैं जिनकी सेवा भगवान करेंगे, इसलिए उन्होंने कोई सेवा नहीं की। भक्ति तो बहुत उच्च कोटि की है, इनको भागवत भी कहते हैं, किंतु भगवान की सेवा नहीं की। ऐसे ही यदि कोई शिष्य मिल जाए तो गुरु जी का उद्धार हो जाए। यदि शिष्य कहे कि गुरु जी को भूख नहीं लगती है, थकते नहीं है, प्यास नहीं लगती, इनको ठंडे की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा। तो गुरु जी उस शिष्य की सेवा करने लगे तो फिर हो गया ना उल्टा, उल्टी गंगा बहने लगी। तो इसलिए भक्ति किसको कहते हैं, अनुकूल रूप से सेवा, अपनी सारी इंद्रियों से सेवा, तन मन वचन और सारी इंद्रियों से जो भगवान की सेवा होती है। इन्होंने क्या किया, हाँ मन से तो की स्तौ स्तुति इत्यादि, और संसार के जितने अनर्थ थे इनको तो छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, किंतु सेवा नहीं की। इसलिए इनकी अपेक्षा हनुमान जी को देखो। नहीं, अभी एक और उदाहरण दे लूं, अच्छी तरह से समझेंगे। मैं 3-4 दिनों तक उदाहरण दे करके शुद्ध भक्ति बतलाऊंगा। भीष्म पितामह जी ये भक्तों में अग्रगण्य माने जाते हैं, द्वादश महाजनों में से एक हैं। यहां पर नारद जी हैं, जम जी हैं, शंकर जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, ब्रह्मा जी हैं, ऐसे ऐसे भक्तों में प्रहलाद उनकी भीष्म पितामह की गणना होती है। और मृत्यु कैसी, इच्छा मृत्यु, सब लोग मृत्यु से तबाह हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए मृत्यु नहीं रुक सकती, और उनके लिए हाथ जोड़ करके खड़े रहेगी, जब ये इच्छा करेंगे तभी मरेंगे। ऐसे उत्तम कोटि के भक्त वो भगवान के साथ में युद्ध किया, पांडवों के विपक्ष बन करके दुर्योधन के तरफ से और कृष्ण से लड़े, और कैसे लड़े। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं धारण करूंगा, कभी नहीं धारण करूंगा। कब प्रतिज्ञा की, जिसमें महाभारत युद्ध होने वाला था और शंख बज गया, भेरी बज गई, अब तो जरूर महाभारत युद्ध होगा। अब अपने अपने सैन्यों को जुटाने लगे, अपने साथियों को। उस समय दुर्योधन कृष्ण के पास में द्वारावती में पहुंचा और उन देखा जी अभी तो भगवान सो रहे हैं, तो उनके सिरहाने पर बैठ गया, पैर की तरफ नहीं बैठा, मैं राजा हूं। और उसके थोड़ी देर पहले ही अर्जुन आया था, वो कहां बैठा, भगवान के चरणों के पास में नीचे बैठा। थोड़ी देर के बाद में दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण उठे तो मैं कहूं कुछ, उनसे मांगू जी हमारे तरफ से लड़िए। जिस समय भगवान उठे, उठ करके सीधा उठ करके बैठ गए और उन्होंने आंख मीची, अरे अर्जुन तू कब आया, कैसे आया, बात क्या है। तो दुर्योधन कह रहा है जी प्रभु मैं पहले आया, ये पीछे आया है। तो उन्होंने कहा जी आप कब आए, इनको कहा आप और उनको कहा तुम, और अर्जुन को देखा, ओ आप पहले आए हैं तो आप किस लिए आइए बतलाइए। अर्जुन कह रहे हैं जब मैं किस लिए आया, हमको तो आपने पहले देखा, ये हमारी अरज तो सुनिए। वो कहे नहीं भाई आप मेरी अरज सुनिए क्योंकि मैं पहले आया। तो कृष्ण ने कहा अच्छा से तुम ही ने मांग लो जो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं महाभारत युद्ध तो ये निश्चित होगा, मैं आया आपके यहां कि आप अपनी सारी चतुरंगणी सेना के साथ में, सेनापतियों के साथ में आप हमारे तरफ हो करके और पांडवों से लड़े। तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने बड़ी नम्रता से कहा, देखो भाई मैं प्रतिज्ञा मैंने की है कि तुम या तो मुझ मुझको ले चलो अपने साथ, किंतु मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कोई अस्त्र नहीं धारण करूंगा। एक तरफ में हमारी चतुरंगणी सेना, सेनापति सभी कुछ रहे, और दूसरे तरफ में मैं हूं और वही लड़ूंगा भी नहीं, अस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो तुम या तो मुझको ले लो या हमारी सेना को ले लो। कहिए आपने तो हमारा कल्याण कर दिया, आप अपनी सेनापतियों को साथ में चतुरंगणी सेना हमको दे दीजिए, जब आप लड़ेंगे नहीं तो लेकर के क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं दे देता हूं। उन्होंने आदेश दिया चतुरंगणी सेना और हमारी सेनापति सब लोग कृतवर्मा इत्यादि सब इसके साथ में चले जाएं, इसके तरफ से लड़ेंगे। सब लोगों ने आदेश मान लिया, लेकर के चलने लगे। कृष्ण ने कहा जी अर्जुन तू थक गया, हमको मांगा, हम तो लड़ेंगे भी नहीं, तू हम लोग लेकर के क्या करेगा। प्रभु ये मेरे सौभाग्य की बात है, अपने माया से दुर्योधन का मति हर लिया इसलिए उसने उसको लेकर के चला गया। हम तो चाहते हैं आप लड़िए मत, कुछ मत कीजिए, आप हमारे रथ के ऊपर में, हमारे मनोरथ के ऊपर में आप सारथी बन करके चलाएं, बस यही हमको जरूरत है और कोई जरूरत नहीं ने? तो महाभारत के युद्ध में कृष्ण उनके लड़ रहे ने? सारथी बने कैसे, उनकी ध्वजा पर रख दिया महावीर जी को, बजरंग हनुमान जी को, जब जब भीड़ आए तो इसकी रक्षा कर। और जब मन से ही जब वो संकल्प करेंगे जो इन सब का विनाश हो जाए, अर्जुन की जीत हो जाए, तो ये बाकी क्या रहा। उन्होंने ले लिया तो प्रतिज्ञा की थी, और भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की मैं ये हरि से अस्त्र कहाऊं तब शांतनु पुत्र कहाऊं तब मैं अपने बाप का बेटा हूं, अन्यथा बाप का बेटा नहीं, जरूर युद्ध में उनको अस्त्र धारण कराऊंगा ही। अब तो आन पड़ी, अर्जुन ने कहा किसी भी स्थिति में आपको अस्त्र नहीं धारण करना, मैं जीवित हूं, मैं सबको मार करके परास्त कर दूंगा, आपको जरूरत नहीं, आपकी इच्छा केवल होनी चाहिए, आप किसी भी स्थिति में न करें। इधर भीष्म पितामह ने क्या किया, लड़ते लड़ते अर्जुन उनको ऐसे छका रहे थे जो एक भी सेना के आदमी को नहीं मार रहे थे, किंतु अर्जुन को पसीना हुआ, और पसीना पोंछने के लिए ज्यों ही बाण चला करके और ऐसा पोंछा, इतने में उन्होंने 10,000 रथियों को मार करके समाप्त कर दिया। ऐसे ही प्रतिदिन करने लगे, और अंतिम दिन में आज कहे आज हरि से अस्त्र गहाऊं, ऐसा युद्ध किया, सबको नाको धना कर दिया, चना चबा दिए। अब कोई कृष्ण देखा जैसे ये तो हमारे अंगों को भी छल नहीं कर रहा है, चारों तरफ छेद कर दिया, अर्जुन को भी, उनके घोड़ों को भी, सबको। कृष्ण ने झट रथ का चक्का उठाया और चक्र जैसा धारण किया, सारी सेनाएं स्तब्ध हो गई। भीष्म पितामह जी रथ को छोड़ दिया, अपने बाण धनुष को छोड़ करके हाथ को जोड़ लिया, प्रभु आप धन्य हैं, आप इच्छा करने से तो मैं मारा जा सकता था, ये अस्त्र धारण की जरूरत नहीं, किंतु हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा कर दी। अच्छे क्यों इनको भक्त माना जाता है, ये कृष्ण की इच्छा से ऐसा किया। यदि भीष्म पितामह जी और दुर्योधन के तरफ से नहीं लड़ते तो युद्ध बंद हो जाता, किसके बल पर लड़ता, भीष्म पितामह के बल पर लड़ा, जब भीष्म पितामह जिसके तरफ में रहेंगे जरूर जीत उसकी होगी, अकेले ही सारे विश्व को हरा सकते हैं, जब इन्होंने परशुराम जैसे लोग को हरा दिया, भगवान को भी, तो और की तो बात किया, नहीं तो युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होता तो धर्म की प्रतिष्ठा होती नहीं, ये असुर लोग मारे नहीं जाते, इसलिए प्रधान कारण ये भीष्म पितामह जी हुए, भगवान की इच्छा से उसके तरफ में रहे, नहीं तो नहीं लड़ते। जिस समय में आरंभ हुआ, शंख बजा, भेरी बजने लगी, उस समय अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपने तर्कश से बाण ली और बाण लेकर उसको चढ़ा करके सबसे पहले एक बाण छोड़ा, और वो बाण भीष्म पितामह के चरणों पर फूल जैसा गिर गया, उन्होंने आज तेरी जय हो, तेरी भी जय हो इस महाभारत में। बस साथ ही साथ कह दिया, अब भीतर से चाह रहे उनका नहीं तो कैसे होता, आज तुम प्रणाम नहीं करता तो तेरी जय नहीं होती, किंतु अब मैं आशीर्वाद हृदय से दे रहा हूं, तुम्हारी जय होगी, जरूर जय होगी। जहां पर धनुर्धर पार्थ हैं, जहां पर कृष्ण जैसे सारथी हों, जहां पर हनुमान जी रक्षा करने के लिए ध्वजा पर हों, जिनका अक्षय और तर्कस और ये बाण अक्षय हैं, अलग से बाण नहीं लेना पड़ता, जहां पर कृष्ण हैं वो धर्म वहीं पर विजय हुई, अंत में यहीं पर विजय हुई। किंतु देखो यहां पर विचार एक है, विषम पितामह जानते हैं कि ये जितने बाण हैं इनको नहीं लगते, बचपन में उन्होंने सुना कालीय दह में क्या किया, कूद गए, जिसमें विष के हिलोरे आते थे, आग जल उठता था और उसमें कूद गए, इनका कुछ नहीं हुआ। और एक बार वन में आग लगी भयंकर, गौओं के बछड़ों को, गौओं को और सखाओं को जलाने के लिए कंस का भेजा हुआ एक चर आग लगा दी वन में और भयंकर आग जलने लगी। उन लोगों ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण झट वहां पर उपस्थित हो गए, आंख बंद करो, आंख बंद किया और पानी की तरफ में सुशीतल पानी जैसे आग का पान एकदम पूरा पान कर लिया, पान कर लिया, जैसे मालूम हो अमृत के समान ठंडा वो हो गया। तो कृष्ण को कहां बाण लगेगा, बाण लगेगा अप्राकृत, जिनका शरीर प्राकृत बाण उनको नहीं लग सकता, मैं जानता हूं। अरे जिसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्वंतर्यामी है, सर्वत्र है, अणु अणु में है, परमाणु में है, और परमाणु भी उसके अंदर में सारा विश्व परमाणु की भांति है, उस प्रभु को मैं क्या कर सकता हूं, बाण नहीं लगेगा इसलिए मारा। किंतु हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, वैष्णव भक्त लोग कहते हैं, यदि कृष्ण को कोई मारे तो यशोदा जी क्या होगा, पहले ही मर जाएंगे, सखा लोग पहले ही मर जाएंगे, और उसको दनादन ये मार रहा है, इनके शरीर में किसी असुर ने प्रवेश किया था, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था, असुर ने प्रवेश किया था, नहीं तो कृष्ण के ऊपर में भले ही अपराकृत शरीर हो, नर्वत लीला हो रही है, कोई उनको ऐसे बाण से कोई भक्त मारेगा, किंतु उन्होंने मारा तो, इसलिए भक्त तो हैं, किंतु कैसे भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, सर्वत्र प्रभु को देखते हैं, ज्ञानी हैं, इनको भूख प्यास नहीं है, कोई सेवा की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, भक्ति देंगे, इसलिए भक्तों में श्रेष्ठ होने पर भी सेवा नहीं है, है? हाँ एक बात और, ये भीष्म पितामह जी कैसे भक्त हैं इसको भी सुन लीजिए। एक समय की बात है, दुर्योधन ने कहा, ओ पितामह जी आप लड़ते हैं हमारी तरफ से और पांडवों का पक्ष लेकर के उनकी विजय चाहते हैं। कहा तुम गड़बड़ सोच रहे हो, यदि होता तो मैं तुम्हारे तरफ से लड़ता तो आप हमारी कभी भी जय नहीं चाहते हैं, मैं ये देखता हूं, उस पर प्रसन्न रहते हैं, हमारे ऊपर में प्रसन्न नहीं है, जो लड़ रहे हैं वो उन्हीं के तरफ से, हमारे तरफ से, किंतु विजय चाहते हैं उनकी। उन्हें कहा जी ऐसी बात मत समझो, मैं तुम ये तुम जैसा चाहते हो उसके बात ही ठीक बिल्कुल। अच्छा देखो आज एक बात करो, मैं रात में भगवान का ध्यान करता हूं और उस समय तुम अपनी पत्नी को, क्या नाम था, भानुमती को, अपनी पत्नी को लेकर के आना और उस समय उसको तुम्हारा सुहाग अचल रहे, अचल रहे माने युद्ध में पराजित न हो, कोई मार न सके, इसे तुम्हारा सुहाग अचल रहे, मैं उसको बर दे दूंगा और उनकी विजय हो जाएगी। ये ठीक है, आज ही लाऊंगा, रात में, आधी रात के समय लाना जब मैं ध्यान में हूं। आधी रात जब हुई तो वो अपनी पत्नी को कहा कि अभी हमारे साथ में तुमको चलना है भानुमती, अभी सब पितामह के तुम जा करके खड़ी हो जाना, तुमको वो बर देंगे अचल सुहाग का, मैं तो फिर जीत जाऊंगा। इस दिन संध्या जहां युद्ध समाप्त हुआ, घोर मसलाधार पानी बरना आरंभ हो गया, पानी बंद ही न हो, चारों तरफ में पानी पानी ही पानी हो गया और जाड़े का समय भी शायद ठंडी हवा चल रही है। उसने दुर्योधन ने कहा, ये सब तो बड़ी भारी मुश्किल है, अब ये पानी घोर अंधकार तूफान में कौन जाए। अच्छा कल चलेंगे, छोड़ दो, जाने दो, आज आराम करो, कल ले चलेंगे। तो वो तो रह गई। इधर कृष्ण ने कहा, सखी, उनको सखी कहते थे, द्रौपदी नहीं कहते थे, सखी कहते थे, सखी अभी तुरंत तैयार हो जाओ, अब मेरे साथ में चलना है। कहाँ चलना है? भीष्म पितामह जी के पास, एक जरूरत है, घूंघट निकाल करके जाना, और जब वो तुमको कोई वर दे दे तब घूंघट निकालना और उनको प्रणाम करना, पहले नहीं।